उनके 12 चक्रवर्तियों में से प्रथम चक्रवर्ती हुए जिन्होंने अयोध्या में जन्म लिया। भगवान ऋषभ देव के पुत्र बनकर इस युग के प्रथम चक्रवर्ती के रूप में जिन्होंने वृषभाचल पर्वत पर अपनी प्रशस्ति लिखी थी, ऐसे भरत भगवान के 923 पुत्र तो उनके बहुत सारे थे, संख्याओ पुत्र पुत्रियो, ऐसा शब्द आया है कि चक्रवर्ती के संख्यातों पुत्र पुत्रियां होती हैं, उनमें से भरत महाराज के भी 923 पुत्र गूंगे थे, जन्म से गूंगे, बोलना ही नहीं आता था, इसलिए कि वे निगोद से आए थे। निगोद कहाँ है? सातवें नरक के नीचे नित्य निगोद है, जो खान है, और वहां पर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले एक इंद्रिय निगोदिया जीव रहते हैं। उनमें ही वे 923 जीव अनाधिकाल से निगोद पर्याय के दुखों को सहन कर रहे थे, और अकस्मात उनके कुछ पुण्य का योग आया, वे मर करके इंद्र गोप कीड़ा, दो इंद्री जीव होता है मखमली कीड़ा, वह हो गए, और उसके बाद भरत चक्रवर्ती के हाथी के पैर के नीचे सारे के सारे दब गए, मर गए, और उन्हीं की रानी के गर्भ में आ गए। देखो कितना रोमांचक उदाहरण है, दो इंद्री जीव उनकी रानी के गर्भ में आ गए, और जब उनका जन्म होता है तो बोलना ही नहीं जानते। बृहद्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंदर आया है कि वे एक बार इंद्र गोप की त्रस्त पर्याय को दो इंद्रिय अवस्था को प्राप्त हुए, लेकिन धवला ग्रंथ के अंदर आया है कि नित्य निगोद से निकलकर सीधे मनुष्य हुए, ये भी प्रेयर केस है, और कोई दूसरा उदाहरण पूरे आगम के अंदर नहीं मिलता, ऐसा कुछ जी माता जी हमें बताती हैं। वे सब गूंगे थे, भरत चक्रवर्ती सब तरह से उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते थे, लेकिन वे बेचारे को बोलते ही नहीं थे, कुछ चाह ही नहीं थी, कुछ इच्छा ही नहीं थी। एक बार उन्हें भरत अपने साथ भगवान ऋषभ देव के समोसरण में ले जाते हैं, समोसरण में जाते ही एकदम उनकी आवाज आ गई, जब ऋषभ देव भगवान की ये समोसरण का चमत्कार, और वहां जाते ही जब बोल पड़े, भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से बताया, ऋषभ सेन गणधर ने उन्हें कहा कि भगवान जी बता रहे हैं कि नित्य निगोद से आए हैं, और हे भगवान आपको महान पुण्य से ये मनुष्य पर्याय मिली है, अगर इसका सदुपयोग नहीं हुआ, अगर फिर से कभी निगोद में चले गए तो पता नहीं कब त्रस्त पर्याय मिलेगी। निगोद में तो कोई समझा नहीं सकता, कोई कुछ संबोधन नहीं दे सकता, क्योंकि वहां एक इंद्री के अलावा कोई इंद्री ही नहीं है। उसी समय उन 923 सभी पुत्र एकदम बैरागी बन गए, अब मुझे घर नहीं जाना, चक्रवर्ती पिताश्री अब हमें घर नहीं जाना है, यही अपने बाबा के समोसरण में दीक्षा लेना है, और वे तुरंत भगवान की साक्षी से दीक्षा ले लेते हैं, और घोर तपश्चरण करके उसी भाव से मोक्ष चले जाती है। उनका जिन मंदिर बन रहा है, क्या सुंदर आभा है, क्योंकि अब वे प्रतिमाएं भी लग चुकी है मंदिर जी में, और चतुर्थकालीन छटा अयोध्या में फैल रही है, इसलिए भरत चक्रवर्ती के चरित्र को आपको विशेष रूप से बताया जा रहा है कि जो स्वयं में भेद विज्ञानी थे, जो भेद विज्ञानी तीर्थंकर के पुत्र थे, उनके पुत्र भी भेद विज्ञानी बन जाए तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। आपने बहुत कुछ सुना, भरत का भारत पुस्तक के माध्यम से सारे आदि पुराण का सार सुन लिया, पर तेज वैभव ग्रंथ का सार समझ लिया। अब क्या होता है कि इधर भगवान ऋषभ देव अपनी समो शरण में विराजमान थे, अपनी दिल ध्वनि के द्वारा भव्य जीवों पर खूब अनुग्रह कर रहे थे। और जब भी चक्रवर्ती उनके समो शरण में जाते तो उनकी दिव्य ध्वनि असमय में भी खिलने लगती थी। वैसे वे प्रातः मध्यान्ह सायं और अर्धरात्रि में भी चार समय तक दिव्य ध्वनि खिलती है। लेकिन अगर गणधर का कोई विशेष प्रश्न हो जाए, प्रमुख श्रोता का कोई प्रश्न हो जाए तो असमय में भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। ऐसे करते करते भगवान का समोसरण पूरे आर्यखंड के अंदर कौशल, अयोध्या, कुरुजांगल, हस्तिनापुर, अंग बंग, चंपापुरी, आंध्र, कर्नाटक आदि सभी देशों में विहार कर रहा था। अब उसके बाद क्या होता है, उस समोसरण के अंदर प्रसाद सेन आदि 84 गणधर थे जो भगवान की निरंतर वंदना करते थे। ब्राह्मी सुंदरी आदि कितनी 350,000 आरिकाएं थी और 300,000 श्रावक और 500,000 श्राविकाएं थी। देव देवियां असंख्यातों बैठे हुए थे और भगवान 100,000 और 14 दिन कम 100,000 पूर्व वर्ष पर्यंत पृथ्वी पर शिव विहार करके धर्मोपदेश कर चुके थे। जब मात्र आयु के केवल 14 दिन शेष बचते हैं तब पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन भगवान कैलाश पर्वत पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। तब सुनो रोमांचक घटना, भगवान योग निरोध कर लेते हैं और 14 दिन केवल उनके आयु में बचे हैं। अब इधर क्या होता है कि जैसे भगवान ने योग निरोध किया, उसी दिन रात्रि में भरत महाराज ने सपना देखा कि महामेरु पर्वत अपनी लंबाई से सिद्ध क्षेत्र तक पहुंच गया। अब सपने आ गए उधर कि अपनी लंबाई से सिद्ध क्षेत्र तक पहुंच गया। और उसी दिन युवराज अर्क की थी सपने देखे, 8 जनों ने सपने देखे। देखो भरत महाराज सपना देख रहे हैं कि महामेरु पर्वत अपनी लंबाई से सिद्ध क्षेत्र तक पहुंच गया। और उसी दिन युवराज अर्क कीर्ति ने स्वप्न देखा, जो भरत के पुत्र थे अर्क कीर्ति, उन्होंने स्वप्न देखा कि महाऔषधि का एक वृक्ष मनुष्यों के जन्म रूपी रोग को नष्ट करके और फिर स्वर्ग को वापिस जा रहा है। ये किसने देखा, अर्क कीर्ति ने सपना देखा। सबको सब अपने अपने शयन कक्ष में सो रहे हैं, महाऔषधि का वृक्ष सबको फल देकर और वह जो है स्वर्ग को जा रहा है। उसी दिन द्रौपदी ने देखा सपने में कि कल्प वृक्ष जो निरंतर लोगों को अभीष्ट फल देता था वह अब स्वर्ग को जाने के लिए तैयार हो गया है। कितने सपने हो गए, भरत ने देखा, आपकी कीर्ति ने देखा और द्रौपदी ने महाऔषधि के वृक्ष को देखा, क्या वो भी स्वर्ग की ओर जा रहा है। उसकी बात क्या होता है कि भारत के प्रधानमंत्री सपना देखते हैं कि एक रत्न का दीपक इच्छुक लोगों को रत्नों का समूह देकर अब आकाश में जाने के लिए तैयार हो रहा है। सब सपने क्या बता रहे थे, भगवान के सिद्धशिला पहुंचने की बात बता रहे थे। तो रत्नों का समूह देकर अब आकाश में जाने को तैयार है। फिर सेनापति जय कुमार ने भी इधर देखा, 5वां स्वप्न मतलब 5वें व्यक्ति ने स्वप्न देखा कि एक शेर है सिंहा वस्त्र के पिंजरे को तोड़ करके कैलाश पर्वत को उल्लंघन करने के लिए वो एकदम तैयार हो गया। देखो कैसा सपना कि शेर जो है कैलाश पर्वत का उल्लंघन करने के लिए तैयार एकदम उभाड़ करके आगे को जा रहा है। अब इसकी बात क्या होता है, सेनापति जय कुमार के पुत्र अनंत वीर्य देखते हैं कि चंद्रमा तीनों लोकों को प्रकाशित करके ताराओं के सहित जा रहा है। चंद्रमा भगवान तो सूरज भी थे चंद्रमा भी थे, तो चंद्रमा जा रहा ये छठा स्वप्न था, अर्थात छठे व्यक्ति ने अनंत वीर ने देखा था। उसके बाद क्या होता है सातवां सपना, सुभद्रा महारानी जो भरत जी की पटरानी थी, सुभद्रा महारानी ने देखा कि सरस्वती और सुनंदा रानी के साथ में बैठी हुई इंद्राणी देर तक शोक कर रही है, बेचारी शोक कर रही है, रो रही है। इस प्रकार से सात सपने हुए। अब आठवें व्यक्ति बनारस के राजा चित्रांगद थे, उन्होंने बड़ी घबराहट के साथ सपना देखा कि सूर्य पृथ्वी तल को प्रकाशित करके आकाश की ओर उड़ा जा रहा है, सूर्य एकदम उड़ा जा रहा है। ऐसे आठ लोगों ने आठ स्वप्न देखे। और उसके बाद रात पुरोहित को बुला करके प्रातःकाल स्वप्न का फल पूछा ही जा रहा था। पुरोहित कह रहे थे कि भगवान ऋषभदेव सभी कर्मों को नष्ट करके अनेक मुनियों के साथ मोक्ष जाने वाले हैं, आप सबके सपने ऐसी सूचना दे रहे हैं। इस प्रकार पुरोहित अपना फल सुना ही रहे थे कि इतने में आनंद नाम का एक किंकर आता है और महाराज भरत से कहता है, राजाधिराज भगवान ऋषभदेव ने दिव्य ध्वनि करना बंद कर दिया, योग निरोध करके बैठ गए हैं और ऐसा लगता है कि मानव सूर्यास्त के साथ निमिलित कमलों से युक्त सरोवर ही हो, सरोवर बिल्कुल अब आभारहित हो गया है। भरत महाराज समझ गए एकदम तुरंत, सुनते ही अपने पूरे लवाज में के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते। इंद्र देवता देवी मनुष्य सब लोग भरत चक्रवर्ती के साथ लगातार भगवान की स्तुति वंदना करने में लग जाते हैं। अखंड महामय नाम की पूजा को करते हुए भरत जी 14 दिन तक भगवान के निकट ही रहे। और उसके बाद माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन भगवान ऋषभदेव को मोक्ष हो गया। जो लोग ऋषभदेव भगवान की कैलाश पर्वत सिद्ध क्षेत्र की, और जब भगवान मोक्ष चले गए तो वर्णन बड़ा रोमांचक दिया है, बहुत ही भावुक वर्णन है कि छाई सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञान से सहित तद्भव मोक्षगामी भरत थे, लेकिन ऋषभदेव के मोक्ष जाने के बाद वे भी बड़े दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं अब हमें दिव्य ध्वनि का पान कौन कराएगा, अब उस अश्रु की धारा बह जाती है, कितने दिनों तक भगवान के समोसरण में रहे, और भगवान के ही पुत्र थे तो मोह होना स्वाभाविक था। लेकिन उसे उन्हें प्रसन्न सेन गणधर समझाते हैं कि देखो भरत तुम कष्ट मत मानो, देखो अगर मोक्ष जाने में कष्ट होता तो इंद्र जो है आनंद नाम का नाटक कर रहे हैं क्यों करते, भगवान ने सारी कर्मों का नाश कर दिया, अब सिद्ध बन गए, वे कृतकृत्य हो गए, उन्होंने अपने सारे कर्तव्य का निर्वाह कर दिया, अब कर्मों को नष्ट करके मोक्ष चले गए। हे भरत आप सबको हम सबको भी इसी जन्म से मोक्ष जाना है, आप शोक को छोड़िए और अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए, ऐसा संबोधन भरत जी ने प्राप्त किया। और अब भरत के वैराग्य की ओर हम आपको ले चलेंगे। ये सब रोमांचक प्रकरण अयोध्या के इतिहास बन गए हैं, इनका श्रवण करते करते अपने चित्त को पवित्र करके महान इस कथा को सुनकर सम्यक दर्शन की वृद्धि, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, यही सबके लिए मंगल प्रेरणाओं आशीर्वाद।